रात का वक्त था। अर्पिता ने कई बार राधिका का फ़ोन लगाया, पर जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो खुद ही बस पकड़कर घर के लिए निकल गई। स्टैंड पर उतरी, जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर था और बीच में सुनसान रोड पड़ते थे। अर्पिता हमेशा जैसी बेफिक्री थी, अपने एक हाथ में ट्रॉली बैग का हैंडल थामे, कंधे पर पिट्ठू बैग लटकाए, कान में ईयरफोन घुसाए, वो हल्के हल्के से झूमते और गुनगुनाते हुए मज़े से बैग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि कुछ आवारा लड़के बस में चढ़ने के वक्त से ही उसका पीछा कर रहे थे। उनकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी, उनकी गिद्ध जैसी निगाहें अर्पिता पर टिकी थीं और वे बस एक मौके की तलाश में थे। अर्पिता जैसे ही उस सुनसान सड़क की ओर मुड़ी, उन लड़कों ने एकदम से उसे घेर लिया। अर्पिता अपनी धुन में मग्न, बिना उन पर ध्यान दिए साइड से निकलने लगी, पर वे रास्ता ही नहीं दे रहे थे। अंधेरे में अर्पिता को उनकी शक्लें भी ठीक से नजर नहीं आ रही थीं, पर अब वो खींच चुकी थी उनकी इन हरकतों से। क्या चिल्ला मची है तुम्हें, सामने से क्यों नहीं हटते? चलो हटो परे और जाने दो मुझे, अर्पिता ने उन्हें चिढ़ाते हुए डांट लगाई और फिर जाने लगी। पर फिर से उनमें से एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसने अपने लाल पीले दांत दिखाते हुए बेशर्मी से कहा, लगता है छोकरी अपन लोगों को पहचानी नहीं। अरे यहाँ अंधेरा भी तो बहुत है, चेहरा नहीं दिख रहा होगा, मुंह पर लाइट तो मार इसके। दूसरे लड़के ने जैसे ही ये कहा, एक तेज रोशनी अर्पिता के चेहरे पर पड़ी और उसने अपनी बाह से अपनी आंखों को ढक लिया। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली तो उस जगह पर हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी थी, जिसमें अब उसे सबके चेहरे नजर आने लगे थे। और जैसे जैसे वो उन्हें देखती जा रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। ये वही आवारा गुंडे थे जो शिखा को परेशान करते थे और अर्पिता ने उन्हें हवालात पहुंचा दिया था। शायद उसी बात का बदला लेने आए थे वे, पर अर्पिता उन्हें देखकर जरा भी नहीं घबराई। अरे तुम तो वही लफंगे हो ना, जिन्हें उस दिन मैंने पुलिस से पकड़वाकर खुद डंडे पड़वाए थे। तुम फिर बेशर्मू जैसे मेरे पास चले आए, लगता है मेरे हाथों अपनी कुटाई करवाने का बड़ा शौक है तुम्हें। पर आज मेरा लड़ने झगड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, पहले ही बहुत थकी हुई हूं मैं, तो आज तो सीधे घर ही जाऊंगी, तुमसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगी, उसके बाद फिर मेरे आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं करोगे तुम लोग। अर्पिता का अंदाज लापरवाही से भरा था, जैसे वो आवारा गुंडों से नहीं बल्कि अपने दोस्तों से बात कर रही हो। उन्हें कम आंककर वो उनकी इंसल्ट कर चुकी थी और अच्छी खासी धमकी भी दे चुकी थी। अपनी बात कहकर अर्पिता उन्हें इग्नोर करते हुए फिर साइड से निकलने लगी, तो अब की बार वहां खड़े लफंगों ने उसकी कलाई पकड़ ली। अर्पिता का माथा ठनक गया, गुस्से की लहर सी पूरे जिस्म में दौड़ गई। यकीनन उस लड़के का छूना उसे नागवार गुजरा था और गुस्सा इतना आया कि उसने सीधे कोहनी उस लड़के के मुंह पर दे मारी। प्रहार इतना तेज था कि उस लड़के की नाक से खून का फवारा फूट पड़ा। अर्पिता ने अपना हाथ झटकते हुए अपनी कलाई उससे आजाद कराई, गुस्से से लाल आंखों से उसे देखा और फुनकारते हुए बोली, हाथ नहीं लगाने का, तेरे बाप का माल नहीं हूं मैं जो मुझ पर दादागिरी दिखाने आ गया। अपनी औकात में रह और अगर अपनी जान प्यारी हो तो निकल ले अपने इन साथियों को लेकर यहां से, वरना अभी पुलिस को फोन लगाती हूं और इस बार तो अच्छे से धुलाई करवाऊंगी तुम सबकी, ताकि दोबारा कभी किसी लड़की को छूना तो दूर, उसे आंख उठाकर देखने से पहले भी हजार बार सोचो। अर्पिता ने जलती निगाहों से उन सबको घूरा और जैसे ही आगे जाने लगी, अब की बार किसी ने पीछे से उसके बाल को दबोच लिया और उसे पीछे की ओर खींचा। अर्पिता का पैर उसके ही बैग से अड़ा और वो सड़क पर जा गिरी। मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और झट से अपना फोन निकालने लगी कि एक लड़के ने उसके हाथ से फोन भी छीन लिया। ना ना ना, ज्यादा होशियार नहीं बनने का, उस दिन तो बहुत लोग थे तेरे साथ, पर आज हमारे और तेरे बीच कोई नहीं आएगा। बहुत हिम्मत है ना तुझमें, आज तुझे हम दिखाते हैं कि हम क्या कितने खतरनाक हैं। बड़े वक्त से इस मौके का इंतजार किया है हमने, आज तुझसे हर बात का बदला लेंगे हम, तुझसे आज पुराना सारा हिसाब बराबर करेंगे हम, तब पता चलेगा तुझे कि हमसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है तूने। और आज ना तू खुद को हमसे बचा पाएगी और ना ही इस अंधेरी सुनसान सड़क में कोई और तुम्हें बचाने आएगा। वो लड़का शैतानी हंसी हंसने लगा, जिसमें बाकी सब भी शामिल हो गए। अर्पिता को अब घबराहट सी होने लगी थी, पर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। हिम्मत बटोर कर उठने को हुई कि फिर किसी ने उसे जोर की धक्का देकर गिरा दिया और आंखों में हवस, होठों पर गंदी सी मुस्कान और घटिया इरादों के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। दूर रहो तुम मुझसे, पास मत आना मेरे, मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, चले जाओ यहां से। अर्पिता लगातार पीछे को खिसकते हुए उसे खुद से दूर रहने को कह रही थी। पीछे होते होते वो किसी दुकान के बंद शटर से टकरा गई। गिरने से पैर मुड़ गया था उसका, जिसमें तेज दर्द हो रहा था, पर अगर कमजोर पड़ती तो आज इंसानी रूप में मौजूद इन जिस्म के भूखे भेड़ियों का शिकार बन जाती, इसलिए एक बार फिर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो उठने लगी। पर वो लड़का घुटने टेकते हुए उसके पास बैठ गया और उसके बालों को बड़ी ही बेरहमी से अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर लिया। अब भी हिम्मत बची है तुझमें हमें धमकाने की,
आज तेरी सारी हिम्मत तो हम निकालेंगे। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों के मामलों में घुसने का, वीडियो बनाने का, हमसे उलझने का। चल आज हम तुझे बताते हैं कि हमसे उलझने का क्या अंजाम होता है। उस दिन तूने हमारी वीडियो बनाकर पुलिस को दी थी, आज हम तेरी वीडियो बनाएंगे और ऐसी वीडियो बनाएंगे कि देखने वाले को मजा आ जाएगा। उस दिन तो तूने उस लड़की को हमसे बचा लिया, पर अफसोस कि आज तुझे हमारे शैतानी इरादों का शिकार होने से बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। अर्पिता के बालों में इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखें भीग गईं। वो लड़का उसके चेहरे की ओर झुकने लगा तो अर्पिता उससे छूटने को छटपटाते हुए चिल्लाने लगी, पास मत आओ मेरे, छोड़ो मुझे वरना जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। अर्पिता के चिल्लाने का उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। शैतानी मुस्कान लबों पर सजाए वो उसके लबों को चूमने ही वाला था कि एक बाइक वहां आकर रुकी। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है? किसी लड़के की आवाज आई थी जो शायद वहां हल्की रोशनी की ओर से आती आवाजें सुनकर रुक गया था। अर्पिता की टूटती हिम्मत को जैसे सहारा मिल गया। उसने तुरंत ही बोलने के लिए मुंह खोला तो उस लड़के ने उसके मुंह को दबाकर बंद कर दिया। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आपसी मामला है, बहन है मेरी, नाराज होकर इस वक्त घर से भाग आई है। वो लड़का ये सुनकर जाने लगा पर उसके आने से सबका ध्यान बट गया था। इसी बात का फायदा अर्पिता ने उठाया, उसके लिए ये जिंदगी और मौत की बाजी थी। अर्पिता ने उसके हाथ में दांत काट लिया और पूरी जान लगाकर चीखी, हेल्प हेल्प, रुको प्लीज। बाइक रुक गई। अर्पिता आगे कुछ कहती उससे पहले ही जिस लड़के के हाथ में उसने दांत काटा था उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया और वो एक चीख के साथ जमीन पर जा गिरी। अगले ही पल उस लड़के के मुंह पर एक दमदार मुक्का लगा और मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा। लड़की पर हाथ उठाता है साला, एक बुलंद रौबदार आवाज वहां गूंज उठी। अचानक हुए इस हमले से बाकी सब सकते में आ गए। उस लड़के के कदम भी लड़खड़ाए पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और अपनी शर्ट की बाह से मुंह से निकलता खून पोंछते हुए बोला, ये बहन है मेरी, अगर बात नहीं मानेगी तो मार भी खाएगी। वो लड़का भी मुक्का खाकर भड़क गया था पर उस बात सुनकर उस लड़के की आंखों में खून उतर गया था। बहन शब्द अपनी गंदी जुबान से मत निकालना, आंखों में हवस भरी है और खुद को भाई कहता है उसका।
इसी के साथ एक और मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और वो जमीन पर जा गिरा। ए हीरो, ये हमारा मामला है, अगर अपनी जान प्यारी है तो निकल यहां से, दूसरे लड़के ने सामने आते हुए बड़े ही गुरूर से कहा और आंखों से चेतावनी दी। पर वो लड़का नहीं घबराया, उसके सामने सीना ताने खड़ा उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए कठोर स्वर में बोला, इस लड़की को छोड़ दो, चला जाऊंगा। क्यों, बहन लगती है क्या तेरी? उनके गैंग के लड़के ने उसके बेवजह बीच में टांग अड़ाने पर भड़कते हुए सवाल किया। उस लड़के ने अब भी बेहद शांति से जवाब दिया, किसी की तो बहन लगती होगी। ए, ये साला बात से नहीं मानेगा, पहले इसी का काम तमाम करते हैं, उसके बाद उस छमिया को देख लेंगे। नीचे गिरा लड़का अब उठकर खड़ा हो गया था और उसके ऑर्डर देते हुए सारे लड़के ग्रुप बनाए उस लड़के पर टूट पड़े। पर वो भी मंझा हुआ खिलाड़ी लग रहा था, उनसे बराबर टक्कर ले रहा था। वो अकेला था और वे गिनती में ज्यादा, फिर भी वो लड़का अकेले उन सब पर भारी पड़ रहा था। अर्पिता ने उसे अकेले इतने लड़कों से लड़ते देखा तो उठकर खड़ी हो गई। आसपास निगाहें घुमाई तो पास की दुकान के बाहर डंडा रखा दिखा। उसने जल्दी से जाकर डंडा उठाया और उन लड़कों पर टूट पड़ी। अंधाधुंध उन पर डंडे बरसाने लगी, किसी का सर फोड़ती तो किसी के तशरीफ सुझा देती, किसी के पीठ पर डंडे बरसाती तो किसी की टांगों पर वार करती। अब तक जो लफंगे उस लड़के से भिड़े हुए थे अब उन्होंने अर्पिता को भी घेर लिया था। इसी आपसी मुठभेड़ के बीच किसी लड़के ने अर्पिता का डंडा छीनकर फेंक दिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा कि अर्पिता ने उसकी नाक पर मुक्का दे मारा और उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भींचकर खींचते हुए गुस्से से चिल्लाई, कमीने, कुत्ते, हरामजादे, सुअर की औलाद, मेरे बाल खींचे थे न तूने, अब देख आज मैं तुझे टकला करके छोड़ूंगी। चिल्लाते हुए अर्पिता पूरा जोर लगाकर उसके बाल खींच रही थी और वो लड़का दर्द से छटपटा रहा था। वो लड़का जो अर्पिता को बचाने आया था उसके कानों में जब उसके शब्द पड़े तो निगाहें उसकी ओर उठ गईं। अर्पिता की पीठ दिखी थी उसे और अनायास ही उस लड़के के होठों पर दबी सी मुस्कान उभर आई थी। देखते ही देखते सारे लड़के ढेर हो गए थे और अर्ध बेहोशी की हालत में पड़े दर्द से कराह रहे थे। वो लड़का अपना हाथ पैर झाड़ते हुए अपने कपड़े व्यवस्थित करने लगा था और अर्पिता बड़ी ही बेताबी से उन लड़कों की जेब टटोलते हुए अपना फोन ढूंढ रही थी। क्या तलाश रहे हैं आप? उस लड़के के सवाल सुनकर भी अर्पिता मसरूफियत से अपने काम में लगी रही। मेरा फोन इनमें से किसी के पास है, आप हटिए जरा पीछे, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, आपने मेरी इतनी मदद कर दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। अर्पिता ने उसकी मदद लेने साफ इनकार कर दिया। वो लड़का कुछ पल खामोश हाथ बांधे खड़ा उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसकी बाह थामते हुए उसे पीछे कर दिया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि नजर अर्पिता के चेहरे पर पड़ी और चेहरे पर खुशगवार सी हैरानी के भाव उभर आए, आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम? उसका ये रिएक्शन देखकर अर्पिता आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड, कौन है ये लड़का, अर्पिता को कैसे जानता है और क्या अर्पिता भी उसे जानती है? इतना हिंट मैं देती हूँ कि नया कैरेक्टर नहीं,
इबादत इश्क में आप इससे मिल चुके हैं, वो भी बहुत करीब से।